أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. سورة طه کا آخری رکوع ہے. چند آیتیں رہ گئی تھیں سورہ مکمل ہونے کے لیے. پہلی آیت میں اللہ پاک اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو صحیح راستہ ملنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ پچھلوں کے انجام سے سبق لیں. پچھلی قوموں کے واقعات اگلی قوموں کے سامنے ہر زمانے میں ان کے نبیوں کے راستے سے پہنچے ہیں, اور قرآن پاک میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے, اور اس میں پچھلوں کے انجام کو بہت واضح طریقے پر سمجھایا گیا. عقل مند آدمی وہ ضرور اس میں غور کرتا ہے, اور جو غور کرتا ہے تو اس کو نتیجہ ملتا ہے. تو اس پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی اس بات سے کہ کتنی بستیاں ہم نے اور کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی ہیں. بے شمار قومیں, بہت سی طاقتور, اور ہر اعتبار سے, کوئی قوم کسی اعتبار سے اور کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت ہی اپنے گھمنڈ میں تھی, اور اس خیال میں تھی کہ ہمیں کوئی فنا نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے ان سب کو ان کے انجام تک پہنچایا. کسی قوم کو تعداد کے اعتبار سے اپنا زعم تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں, اور جو مقابل لوگ تھے ان کے بارے میں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ چند لوگ مل کے ہمارا کچھ بگاڑ لیں گے. یہ نوح علیہ السلام کے ऊपर ईमान लाने वाले 80 आदमी थे कमोबेश। अब भला 80 आदमी मिलके पूरी दुनिया का मुकाबला क्या करते? उनको गुमान भी नहीं था कि हम कभी किसी वक्त तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहि सलाम से फरमाया कि इंतजाम हम करेंगे, तुम अपने इन 80 के बचाने का इंतजाम कर लो। और तदबीर ये बता दी कि कश्ती बना लो और उसमें सवार हो जाओ। और फिर नूह अलैहिस्सलाम को बदर ये वही ये बता दिया कि ऐसा तूफान आने वाला है कि जानवर भी सारे मर जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की जो मसलहतें जानवरों से मुताल्लिक हैं वो फौत हो जाएं, इसलिए जानवरों का एक एक जोड़ा भी साथ में रख लो। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने ईमान वालों को सवार कर लिया और जानवरों के जोड़ों को भी सवार कर लिया सब। और फिर जो बारिश हुई है, ऊपर से बारिश और इधर नीचे से बारिश, जमीन में से पानी उगलना शुरू हो गया, और तो और जो तन्नूर है उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया, आग जलने की जो जगह होती है। बस फिर तो यह था कि अजाब आम आ गया, पूरी जमीन पर पानी आ गया था। इसीलिए जो तमाम जानवरों को भी, जानवरों की एक एक किस्म को उठा लेने को कहा था। तूफान नूह जो है वो पूरी जमीन को मुहित था। और तारीखी रिवायतों में यह है कि 6 महीने तक था। अब 6 महीने तक कोई कहाँ तक पना ले सकता था? बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियां उसमें डूबी हुई थी, ये भी नहीं कि थोड़ा सा पानी था। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को यही गुमान हो गया था कि पानी पड़ेगा अभी तक कितना पड़ेगा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, साहब ये राजे बनी आपसे भी नहीं मिलेगा, मैं पहाड़ का सहारा ले लूंगा और पानी से बच जाऊंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह का इरादा जो है सबको खत्म करने का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पहाड़ पे अगर जाएगा तो भी नहीं बचेगा। वह हाल बैनहुम अलमौज, वो इसी तरह अपने आप को पहाड़ पर बचाए हुए था, एक मौज आई और पहाड़ पे से उड़ा लिया उसका, पानी की एक मौज आई पहाड़ पर से उखाड़ लिया उसको। कौम आद और कौम समूद ऐसी ऐसी कौमें थी कि उनको अपनी हेल्थ पर बड़ा जान था, बीमारी नहीं होते थे, मरते ही नहीं थे, बजाहिर कोई असबाब नहीं थे उनके मरने के, ऐसे कवि आसार के लोग थे और इनके पूरे बड़े बड़े एकदम चार चार मकाना, चार चार मरतबा उनको अपने घर के लिए मकान बनाना, अपने रहाइश के लिए मकान बनाना पड़ता था, शौक के लिए नहीं बल्कि जरूरत के लिए। एक एक मकान बनाया 200-300 साल में वो गिर गया, दूसरा मकान बनाया 200-300 साल में, 400 साल में वो गिर गया, तीसरा मकान बनाया तो 300-400 साल के बाद वो गिर गया। एक एक आदमी को 3-3, 4-4 मकान जरूरतन बनाने पड़ते थे कि एक बनाने के बाद वो गिर जाता था, वो उनकी सेहत से फर्क नहीं पड़ता था कुछ। तो वैसे लोगों को जो सदियों तक जिंदा रहते हैं और सदियों तक जो है उनको सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उनको कैसा जाम नहीं हो सकता है? अब जब हजरत सालेह अलैहि सलाम ने उनको समझाया और हूद अलैहि सलाम ने उनको समझाया, उनको मानी मानते थे, चंद लोग ईमान लाए थे जो समझबूझ से काम ले रहे थे, बकिया को जाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पानी का निज़ाम नहीं चलाया, उनके लिए हवा का निज़ाम चलाया। हवा तेज चली और 7 दिन और 8 रातों तक इतनी तेज हवा चली कि कोई आदमी बाहर निकलता वो उसको पकड़ लेती, उठा के पटक देती वो खुद ही, और इतनी जोर से मारती थी निशाने के साथ गोया कि वो खत्म ही हो जाते थे। फिरौन का किस्सा तो अभी गुजरा हुआ है, अपने लश्कर पर, अपने ताकत पर, अपने जोर पर, अपने फौज पर, अपने असबाब पर बड़ा घुमान था उसको। मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम उनके बाद उनको केयर ही नहीं करता था, गुमान भी नहीं था उसको कि ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे। ठीक है, मूसा अलैहि सलाम के साथ अजदा जरूर था मौजूदा, लेकिन यह कि पूरी की पूरी कौम को खिलवा देंगे ऐसा तो वो गुमान नहीं कर सकता था, उसको ख्याल ही नहीं था। अल्लाह पाक ने इनके लिए दूसरा निज़ाम किया कि इनको पानी में पहुँचा दिया। नूह अलैहि सलाम की कौम के पास खुद पानी आ गया था, फिरौन को, फिरौनियों को जो है ना वो पानी में खुद पहुंचा दिया कि तुम चले जाओ वहां। उनके ने कोई ये सोचे कि अगर ये ना जाते तो बच जाते, अल्लाह ताला जब कोई चाल चलते हैं तो बच नहीं सकता कोई, वो ले ही जाते वहां। और अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया कि मैंने ही ले लिया था, मैंने पहुंचाया वहां पे पानी। ऐसा इंतजाम होता है कि उसमें उसको खैर नजर आ रहा था उसके हक में। तो जिसके आप जिस आदमी को खैर नजर आए वो कैसे नहीं जाता उधर, उसको क्या पता था कि वहां पे शर है उसके लिए। वो में शोएब है तिजारत के मामले में, बिजनेस के मामले में बड़े पावरफुल थे, आलमी मंडियां उनके पास थी, पूरी दुनिया पे उनके कारोबार थे। उनको इसका गुमान था कि कारोबार हमारे हाथ में हैंडल में है, कंट्रोल हमने किया हुआ है पूरा माशी निज़ाम को इकनॉमिक। बस हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे कि ये कोई चीज़ नहीं है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए दूसरा इंतज़ाम कर दिया। मुख्तलिफ अज़ाब के जिक्र आता है उसमें, उसमें से एक ये है कि सायका ने उनको ख़त्म कर दिया, आवाज़ के ज़रिए से उनको ख़त्म किया गया। एक ऐसी ज़ोर की आवाज़ आई कि सारों के जिगर फट गए। वहाँ पे क्या बचता था, जोर के धमाके के बाद में आदमी कितना ही बड़ा ताजिर हो और कितना ही ताकतवर हो कुछ जम नहीं सकता, वो तो उसमें चला गया। एक कौम गुजरी है जिनको अपने खेतों पर बागों पर बड़ा जान था, और ऐसा इंतज़ाम किया हुआ था उन्होंने कि उनको ये गुमान था कि कभी जवाल नहीं आ सकता हमको। लखन खान अली सबा इन फी मस्कन ही मारे कौम सबा, उनको ये गुमान था। अल्लाह तबारक व ताला ने चूहों के जरिए से तबाह कर दिया उनको। उनके जो बड़े बड़े डैम बने हुए थे, ऐसी जगहों से चूहों ने सुराख डाल दिया कि जहां से उनको गुमान भी नहीं था कि इतने बड़े डैम को सुराख भी डाल देंगे चूहे। और पानी का तो मामला ये है कि उसको तो बस जगह चाहिए थोड़ी सी, उसके बाद कुछ पूछना नहीं पड़ता। बहुत चूंकि पानी उन्होंने जमा किया हुआ था तो इतना प्रेशर था कि वो सारा निकल गया, और पूरा जो निज़ाम उनका एग्रीकल्चर का था पूरा दरहम बरहम होके रह गया। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने, ये तो वो वाक़ियात हैं जो कुरान पाक में तफसील से बयान किए गए हैं, और जो नहीं बयान किए वो अलग है बिल्कुल। और तुम अहलकना मिन क़रयतिन बक़िरत मईशतहा, कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया जो अपने मईशत से अकड़ गई थी। मईशत कहते हैं अपने रोजगार से, खाने पीने पहन सहन के तौर तरीके से। फतिल का मसाकिन हम, उनके खंडरात को जाके देख लो। लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला, कि उसके बाद में वहाँ रहने वाले बहुत कम थे। इसको अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये लोग कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इनको इस बात से अकल नहीं मिली। क्या इनको अभी समझ में नहीं आया कि कितनी बस्तियां हमने इनसे पहले की, कितनी कौमें हमने इनसे पहले की तबाह कर दी हैं। यमशू नफी मसाकिनहिम, चलते हैं वो उनके रहाइश के इलाकों में। मक्के वाले अपने तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम और मुल्क यमन की तरफ आना जाना रखते थे। सर्दियों के इलाके में एक तरफ जाते थे, गर्मियों के इलाके में एक तरफ जाते थे, कारोबार पर उनकी ज़िंदगी डिपेंड थी। और रास्ते उनके जो थे वो इन मुल्कों को जाते हुए, ये उसमें ये कौमें इनके खंडरात पाए जाते थे, उसमें से वो गुजरते थे। सुनाचे आज तक भी आसार कदीमा के तौर पर बहुत से खंडरात देखे जाते हैं। इसलिए फरमाया यमशू नफी मसाकिन, चलते हैं वो उनके रहाइश के इलाकों में। इन नफी ज़ालिक लआयात लिउलिन्नुहा, बेशक इसमें इन वाक़यात में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। नुहा नुहियतुम की जमा है, नुहिया के माने समझ और अकल, क्योंकि इसका ताल्लुक खालिस अकल से है, कियास से है, कि आदमी उन लोगों की हालत को मुंतविक करके देखे अपनी हालत पर, और पिछले अंबिया के वाक़यात को मुंतबिक करके देखे इस नबी की मुआफ़क़त और मुखालफत पर, कि वहाँ मुआफ़क़त का अंजाम क्या हुआ और मुखालफत का क्या हुआ, यहाँ मुआफ़क़त का क्या होगा मुखालफत का क्या हुआ, इसका ताल्लुक अक़ल से है। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लकाना लिज़ामुहुम व अजलुन मुसम्मा, अगर तुम्हारे रब की तरफ से तयशुदा बात न होती। अल्लाह ताला ने सब उमूर को तय फरमा दिया है। उन उमूर को जिनको तय किया गया है उसमें से ये भी है कि काफिरों को और मुखालिफिन को और दुश्मनान इस्लाम को सज़ा जो है ना वो कब दी जानी है और कितनी दी जानी है। तो अगर ये बात तय न होती पहले से तो लकान अलिजामन, तो अजाब ज़रूर आ जाता। ये दुनिया मोहलत की जगह है, अल्लाह ताला ने यहाँ आजमाइश के लिए वक्त दिया हुआ है लोगों को, और ये पहले से तय कर दिया है कि इसमें इनको मोहलत दी जाएगी। तो अजाब न आने से ये न समझा जाए कि ये सजा के मुस्तहिक नहीं है, ये बात नहीं है, बल्कि ये है कि इन लोगों के लिए सजा का एक वक्त पहले से तय कर दिया गया है। तो अब जब तक के वास्ते रील है, बस मौका है। अगर ये ना होती बात कि तय हो चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, लता निजामन, तो फिर अजाब का आना इनके लिए लाजिम था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद आपकी मौजूदगी में किसी को अजाब नहीं दिए जाने का वादा कर लिया गया, और आपके इस दुनिया में आने की बरकत से किसी किसी कौम को पूरी की पूरी दुनिया से खत्म नहीं कर दिए जाने का वादा कर लिया गया। इंसानों पर अजाब आम नहीं आएगा कि पूरे ही खत्म कर दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। फसबिर अला मा यकुलून, तो इस वजह से जो ये लोग कह रहे हैं इस पर आप सब्र कीजिए। अब यही बात रह जाती है कि जब उनको आजाद नहीं आता तो वो अपने को मजमूम नहीं समझते, अपने हालत को बुरी नहीं समझते और अपने को नाकाम नहीं समझते, बल्कि दूसरे लोगों को भी खलजान हो जाता है इस बात का कि अगर ये अल्लाह ताला के इतने ही गैर महबूब होते तो इनको इतनी सहूलत क्यों दी जाती। और उनको भी ये गुमान होता है कि अगर हम अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा ना होते या पसंदीदा दीन पर ना होते तो हमें इतनी ढील अल्लाह क्यों देता, जबकि उसकी कुदरत उसके हाथ में सब कुछ है। तो ऐसे लोग जो हैं वो जो बात कहेंगे तो उस पर सब्र ही किया जाएगा, बस हस्बिर अला मा यकुलून, आप सब्र कीजिए उन बातों पर जिसको ये कहते हैं। एक ये कि अपने बारे में हक पर होने का और अपने इंदल्लाह महबूब होने की बात, और दूसरे उस महबूब होने के गुमान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत है और आप पर ताने करने ताने तशनी, जो ईमान लाने वाले लोग हैं उनके ऊपर ताने, उनके ऊपर जुमले कसना, उनके ऊपर हंसना और उनको मुख्तलिफ तरीके पर ईजा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, ये हर जमाने में होगा। दुनिया में जब तक है ये एक निज़ाम है अल्लाह पाक का, इसलिए फसबिर अला मा यकुलून, जो ये लोग कहेंगे आप उस पर सब्र करें। क़यामत तक ये होगा कि कुछ लोग कहने वाले होंगे और कुछ लोगों को सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान पाक की आयत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खिताब है ही, और हुजूर के तवस्सुल से हुजूर के मानने वालों को सबको ये खिताब है कि मुखालिफिन की तरफ से कुछ सुनने वाली बात जरूर अल्लाह के मानने वालों को पेश आएगी, जिस पर ईमान वालों को सब्र ही करना है। बसबिह बिहम्दि रब्बिक, और अपने रब की हम्द के साथ में तस्बीह बयान कीजिए। कबल तुलू शम्स, सूरज के तुलू होने से पहले, व कबल गुरूबिहा, और सूरज के गुरूब होने से पहले, व मिन आना लैल, और रात के वक्तों में भी। फसबिह, आप तस्बीह बयान कीजिए, व अतराफ अन्नहार, और दिन के किनारों पर भी, दिन के मुख्तलिफ अवकात में भी और रात के मुख्तलिफ अवकात में भी, और ख़ास तौर पर सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए हम्द के साथ में। लअल्लका तरदा, ताकि आप राजी हो जाएं, ताकि आप खुश हो जाएं। अगर ऐसा करोगे तो जो इसका बदला मिलेगा उस बदले में आप खुश हो जाएंगे। उलमा ने फरमाया कि मुखालिफीन के लिए मुखालिफत और दुश्मनों के लिए एक इलाज यहाँ बयान कर दिया गया है, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आपको एक तरीका बताया गया और पूरी इंसानियत के लिए भी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दुश्मनी से कोई खाली नहीं होता, मामूली से मामूली आदमी है उससे कोई ना कोई दुश्मन होगा, बड़े से बड़ा आदमी है उससे कोई ना कोई दुश्मन होगा, दुश्मन छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, कम नुकसान पहुंचाने वाला भी होता है ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भी होता है। छोटी दुश्मनी भी छोटी नहीं होती और बड़ी दुश्मनी भी बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी से बड़ी दुश्मनी से कुछ नहीं होता, छोटे दुश्मन से बहुत हो जाता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि किसी की दुश्मनी को मामूली मत समझो, एक चिंगारी पूरी बस्ती को जला देती है, एक चिंगारी हल्की सी आंच ये बस्ती को लग जाए तो फिर वो फैल जाती है, सारी बस्ती जल जा सकती है। और हर इंसान की फितरत में है दुश्मन से बचना, उसका बच नहीं पड़ता है उसको, वरना उसे नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि दुश्मन कहते हैं उसको जो नुकसान पहुंचाएगा, पहुंचाने की कोशिश करेगा, अलल अकल ख्वाहिश करेगा, जरा उससे आगे कोशिश करे, दुश्मनी ज्यादा है तो कोशिश बलीग करेगा, अपने वसाइल के एतबार से करेगा। कम वसाइल लगता है तो कम नुकसान पहुंचा करेगा, ज्यादा वसाइल लगता है तो ज्यादा पहुंचा देगा, मगर यह है कि पहुंचाएगा। और दुश्मन के तकलीफ पहुंचाने से दुश्मन को खुशी होती है, चाहे उसका कोई फायदा ना हो, उसको बड़ी मसरत होगी। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के हंसने से और दुश्मनों के खुश होने से भी पनाह मांगी है। बाज दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं, उनसे खास तौर पर पनाह मांगी, اللهم اني اعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني ان راى حسنة دفنها وان راى سيئة اضاعها। अल्लाह में ऐसे ऐसे मकर करने वाले दोस्त से कि जो जाहिर में मकारी से अपने को दोस्त बता रहा है लेकिन अंदर से नहीं है, ऐसे बहुत होते हैं। मैं पनाह मांगता हूँ कि उसकी आंखें मुझे देखती रहती हैं और उसका दिल मेरी निगरानी करता रहता है, आयना उतर यानी वकल्बुहु यरान इन रहा हसनतन दफन, अगर कोई खूबी देखता है तो उससे अनजान मार देता है, दफन कर देता है। वह इन रहा सैयतन अजाहा, और अगर कोई बुराई उसकी नजर में आती है तो उसकी इशात करता है, खूब उसको फैलाता है, क्योंकि उसको तो मौका मिल गया। दुश्मनी से कोई खाली नहीं होता, न मर्द खाली होते न औरतें खाली होती। यहां इस आयत में अल्लाह ताला ने उसके दो तरीके बताए कि दो काम करो दुश्मनी से बचने की। पहली बात यह है कि तुमको सब्र से काम लेना पड़ेगा। इसका मतलब मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि दुश्मन को दुश्मन के इंतकाम के पीछे न मत पड़ो, क्योंकि फिक्र इंतकाम ये भी एक मुसीबत ही है। दुश्मन से बदला लेने की जो फिक्र होती है ये इतनी उलझन है कि बाज मरतबा आदमी कितना ही बड़ा हो अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो सिवाय खलजान के कुछ हाथ को नहीं आता। फिक्र इंतकाम जो मोटी मोटी तदाबीर है वो तो कर ली जाती है, लेकिन ये कि रात दिन उसी चक्कर में रहना कि इसका क्या करूं इसका क्या करूं इसका क्या करूं, कुछ होता हुआ था नहीं उसमें ज्यादा। दुआ दरूद की लेन की कुछ फिक्रें हैं वो थोड़ी कर लें, जाहिरी तदाबीर के एतबार से कभी दुश्मन इंतजाम की दुश्मन से बचने के वास्ते इंतजाम की जरूरत पड़ती है वो कर ली, और फिर उसके बाद में एहराज और सब्र से काम लिया। अहले हक की और बुजुर्गों की जो मुखालफतें की जाती रही हर जमाने में, अजीब बात है हर जमाने में उनकी मुखालफत होती रही। आज जो हमारे पास मुत्तफ़क़ अलैह बुजुर्ग है ना, उनके अपने जमाने में वो मुत्तफ़क़ अलैह नहीं थे, बहुत सख्त मुखालफत हुई। इमाम गजाली को आज हम कितने मुकद्दस अंदाज में नाम लेते हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि इमाम गजाली पर उनकी जिंदगी में कुफ्र का फतवा था उनपे, और उनके अहिया उल उलूम को जलाया गया था कि ये आदमी गुमराह आदमी है, इसकी बात गलत है। आज अहिया उल उलूम कितने लोग छापते रहते हैं पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं छपते रहती हैं, मगर उनकी किताब को जलाया गया। हजरत पीरानी पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में बहुत मुखालफतों से गुजरे हैं, उन पर भी कुफर का फतवा था, कुफर से तो कम उतरती नहीं कौम। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कासिम नौनवी, इस जमाने के जो बड़े बुजुर्ग हैं टॉप के नंबर वन के इस सदी के इस 100 साल के बहुत से हैं, उसमें से ये तीन बहुत टॉप के हैं, हजरत मौलाना कासिम नानकवी और हजरत मौलाना अशरफ अहमद गंगोही और हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी, अपने वक्त के औलिया अल्लाह में से हैं। हदीस के एतबार से, फिका के एतबार से, तसव्वुफ के एतबार से, इल्म के इमाम और तकवे और परहेजगारी के एतबार से विलायत के आला मकाम पर, बड़ी मुखालफत हुई, उनके ऊपर कुफर के फतवे लगे। इन बुजुर्गों के बारे में ये मिलता है कि जो इन पर इल्जाम लगाए गए एक मरतबा उन्होंने बता दिया कि इस इल्जाम की कोई हकीकत नहीं और हम इसके कायल नहीं है जो हमारी तरफ मंसूब किया है। ये बिदतियों ने बहुत कुछ उछाला उनके ऊपर, बरेलवियों ने, अहमद रजा खां जो उनके बड़े हैं उन्होंने उन्होंने एक मरतबा जो है ना जवाब दे दिया बस। उसके बाद में लोग बोलते हैं मुखालफतें करते हैं, कभी उन्होंने उसको केयर ही नहीं किया, यानी कि इनके पीछे पड़ेंगे तो असली काम रह जाएगा। नेगेटिव वाला जो सिस्टम है वो हमेशा आदमी को मशगूल करता है, फायदा उसमें कम से कम है। पॉजिटिव में कुछ कर लेना बेहतर है उसके बदले में। यहाँ काम नहीं करने दे रहा इसको छोड़ो वहां काम कर लो, ये काम नहीं करने दे रहा कोई इसको छोड़ो वो काम कर लो, बस उससे तो बेहतर वो है, जान छोड़ो अपने। नतीजा उसका ये हुआ कि इन लोगों से इतने बड़े बड़े कारनामे हो गए कि बड़ी बड़ी जमातें मिलकर जो काम नहीं कर सकती थी वो अकेले अकेले ने कर लिया, उन लोगों ने एक एक आदमी ने कर लिया। अगर 150 उलमा की जमात को रखा जाता वो काम करने के लिए जो इन बुजुर्गों ने इंडिविजुअल किया है तो नहीं हो सकता था। एक तो उनकी बरकत, उनके औकात में अल्लाह की तरफ से कबूलियत, और दूसरे के औकात का इस्तेमाल उन्होंने सही कर लिया, छोड़ो। इसलिए ये फरमाया कि एक तरीका तो जो है वो सब्र करने का है। अब ये चाहे वो अपने करीब के सर्कल से दुश्मन हो, दोस्तों यानी अपने ही जान पहचान वालों में से, ताल्लुकात की बुनियाद पर, खानदानों की बुनियाद पर, काम के एतबार से, और कभी ये दुश्मनी जो है वो बाज़ाब्ता इस्लाम और गैर इस्लाम की बुनियाद पर आती कि मुसलमान है इसलिए परेशान किए जा रहे हैं, मुसलमान है इसलिए सताए जा रहे हैं, गैर मुस्लिम की तरफ से सताया जा रहा है, चाहे वो हुकूमत के लेवल से हो, चाहे पब्लिक के लेवल से हो, चाहे वो इंफरादी लेवल से हो कि इज्तमाही लेवल से हो। एक कोई गैर मुस्लिम कौम मिलके करे या कई गैर मुस्लिम अकवाम मिलके करें, सभी पॉसिबल होता है और सब वाक़ होते रहता है वक्तन फ़वक्त। और क़यामत के करीब ये बहुत होगा कि पूरे गैर मुस्लिम मिलके मुसलमानों को सताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क़यामत के करीब जैसा जैसा जा रहे हैं वैसा वैसा एक ख़ास बात यह है कि काम में इज्तमाहीत आ रही है, हर काम इज्तमाहीत से करो उसमें ताकत होती है, ये राज खुल जाएगा कौमों पर। तो मुखालिफत भी इज्तमाहीत से करेंगे तो सही होगी, ये राज उन पर खुल जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के करीब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिम अकवाम ऐसे आपस में एक दूसरे को बुलाएंगी जैसे वलीमे के खाने पर बुलाया जाता है। तदात अलैकुमुल उमम, तुम्हारे ऊपर उम्मतें एक दूसरे को बुलाएंगी जैसा कि तुम बुलाते हो किसी को वलीमे पर, आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, लूट मच जाएगी, जिससे जितना मौका मिल रहा है लूट लो, पैसे बना लो, चीज बना लो, सामान बना लो। साहबा ने कहा कि उस दिन हम बहुत कम होंगे, फरमाया कि उस दिन तुम लोग बहुत ज्यादा होंगे, तादाद में कम नहीं होंगे तुम उस दिन, लैसा बिकिल्ला वअंतुम हीनइज़िन कसीर, तुम तो उस वक्त बहुत ज्यादा होंगे तादाद में। लेकिन यह है कि तुमको वहन लग जाएगा, हुज़ूर ने फरमाया, लेकिन यह है कि उम्मत मुस्लिमा को वहन लग जाएगा, जैसे घुन लगता है लकड़ी को, कीड़ा एक उसमें अंदर घुस जाता है, छोटा सा काटता रहता है काटता है, ऊपर से लकड़ी झूंकी तो है अंदर से बिल्कुल फोकल हो गई, जरा सा वजन पड़ा और बिल्कुल नीचे, लोहे को जंग लग जाता है, देखने में इतना मजबूत है लेकिन आहिस्ता 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 ऐसा गल जाता है जंग की वजह से कि वो जरा से वजन को भी फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे लोहे को जंग लगता है, लकड़ी को घुन लगता है, इंसान को वहन लगता है, ये वहन कभी इंफरादी लगता है कभी इज्तमाही लग जाता है, पूरी मुल्लत मुस्लिमा को वहन लग जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है जो इस उम्मत को लगेगा, तो फरमाया कि हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, जैसे और दुनिया को चाह रहे हैं ये भी दुनिया को चाहेंगे, जैसे और दुनिया पे भाग रहे हैं ये भी दुनिया पे भागेंगे, हालांकि इनको बता दिया गया कि तुम आखिरत के लिए हो, तुम आखिरत की तैयारी करो। दुनिया की जब मोहब्बत चढ़ जाएगी तो उसकी रग़बत पैदा हो जाएगी दुनिया में रहने की, और हर वो चीज़ जो उनकी दुनिया को डैमेज करे मुतासिर करे आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा चाहे कुछ हो जाए, वो नहीं हो सकता मेरे से। तो उसमें आदमी जो है ऐसा कोई काम नहीं कर सकता इज्तमाहीत के साथ में जो गैरों के साथ में दिफाई निज़ाम को काबू में ला सके, बिक जाएंगे लोग। अब दुनिया की मोहब्बत ही है कि आदमी बिक जाता है, दुनिया की मोहब्बत ही है कि आदमी दब जाता है, मरऊब हो जाता है, मुतासिर हो अपनी कुर्सी की हिफाजत में, अपनी हुकूमत की हिफाजत में, अपनी ताकत की हिफाजत में, ठीक है भाई आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, جتنے مسلمانوں کے لیڈر آپ کو ملیں گے دنیا کی محبت کے شکار ہونے کی وجہ سے دوسروں سے دبنے پر آپ کو مجبور دکھیں گے. اگر ان میں دنیا کی محبت نہ ہو تو ان کو دبنے کی ضرورت ہی نہیں, زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائیں گے, مار دیے جائیں گے, اس چیز کی کیا بات ہے. اور موت سے نفرت و کراہیت الموت, قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو مرنے سے اس لیے نفرت ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے فراڈ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مخالفت کی ہے, تو انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جانا ہے, اس لیے مرنا نہیں چاہتے جب تک دنیا میں ہے مزے کر لیں. اور جن لوگوں کے پاس میں آخرت کا عقیدہ نہیں ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ہے مزے کر لیں, تو جتنا زیادہ دنیا میں رہیں گے اتنا مزے کر سکیں گے, نہیں رہیں گے تو مزے ہی کہاں سے کر سکیں گے. اور جو دنیا کے مزوں کے طلب میں آخرت کو چھوڑ دے گا تو اس سے کوئی توقع آپ آخرت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے کہ وہ آخرت کے لیے کچھ بڑا کارنامہ کر لے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب امت میں بحث ہے تو مجموعی یہ مزاج بن جائے گا, تو یہ گویا مسلم مزاج کا کیڑا ہے, یہ اسلامی مزاج کا یہ کیڑا ہے جو اندر سے کھوکھلا کر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسلامی مزاج کی مضبوطی میں یہ بات ہے کہ اس کو دنیا کی محبت نہیں ہونا اور اس کو موت کی نفرت نہیں ہونا, موت کے ڈر میں رہنا ہوتا. اب جب یہ بات آ گئی تو کتنے ہی مسلمان ہو جائیں اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور سنبھالنے والا جو ہے نا وہ چند آدمی ہوتے ہیں, وہ پوروں کو سنبھال لیتے ہیں, کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا ان کے وہاں سے, باڑ لگا دیا کہیں جا نہیں سکتے, چارہ ڈال دیا کھا رہے ہیں, جتنے چاہے نکالتے جاؤ کاٹتے جاؤ, نکالتے جاؤ کاٹتے جاؤ, جتنے بنے ہوئے ہیں فارم یہ سب یہی کرتے رہتے ہیں. کل ہی ہمارے ایک دوست تعارف کرا رہے تھے کہ ایک آدمی کے 10 ملین گائے ہیں برازیل میں, 10 ملین ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے نگرانی کرنا پڑتا ہے. اچھے بڑے بڑے فارم ہیں لوگوں کو, اور مسلمان ہیں, پتہ نہیں زکات بھی نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, کیونکہ گایوں کی زکات الگ ہے, ہر 25 گائے پر ایک چیز ایک بکری ہوتی ہے, ایک بکری نہیں ایک گائے کا بچہ ہوتا ہے 1 سال کا, 2 سال کا بلکہ مسلم میں, تو یہ 10 ملین کے اوپر اگر نکالے گا تو کتنی زکات ہوگی, اچھی خاصی زکات ہو جائے گی. اتنا ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے, دیکھیں عجیب بات ہے, کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے پاس کیسی کیسی طاقتیں ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے ایک بات یہ فرمائی کہ تم فاصبر علی ما یقولون, جو یہ جو لوگ یہ کہیں گے اس پر صبر کرنا پڑے گا, صبر کے لیے طبیعت کو آمادہ کر لینا کہ بھائی کچھ برداشت کرنا ہے. اور دوسری چیز مشغولیت کی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لینا, عبادت کی مشغولیت جو ہے نا یہ آدمی کا ٹینشن کو ریلیز کر دیتی ہے. اور مخالفتوں سے بچنے کا بہترین راستہ کہ رجوع الی اللہ کر لینا, اس لیے کہ گنڈی تو سب کی ان کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ چاہیں تو دل کسی کا بھی نرم کر دیں, چاہیں تو سخت کر دیں, چاہے تو سارے مل کر نقصان پہنچانا چاہے انہوں نے بچانا چاہا تو بچ ہی جائے گا, اور اگر سارے مل کے فائدہ پہنچانا چاہے اللہ ہی نے نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو رجوع اللہ سے توکل کی بھی شان پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی مدد کھینچنے کا وہ ذریعہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ تسبیح میں مشغول ہو جائیے اور یہ ہے کہ صبر کر لیجیے, اور یہ سب کے لیے ہے, یہ اپنے لیے بھی ہے یعنی انفرادی طور پر بھی ہے, اجتماعی طور پر بھی ہے, یہ طریقہ ہے. بقیہ بالکل کوئی تدبیر کرنے کو منع کر رہے اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے, یہ بھی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے, اور ویسے دشمن سے بچنے کی جو تدبیریں جائز ہیں اسلام میں وہ کر لی جا سکتے ہیں, اور اس میں ذہن کو زیادہ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے فرما فاصبر علی ما یقولون, جو یہ لوگ کہیں آپ ان پر صبر کر لیجیے, وسبح بحمد ربک. اور تسبیح بیان کرنے کے اندر عام طور پر تسبیح کا ترجمہ نماز پڑھنے سے ہے, اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ سبح بحمد ربک میں نماز پڑھو اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو کا بیان ہے. تسبیح سے مراد نماز پڑھنا ہے, بحمد ربک جس میں اپنے رب کی حمد ہو, اور حمد سورۃ الحمد میں ہے, الحمدللہ رب العالمین میں ہے, اور یہ مجمل ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, ہر نماز میں فاتحۃ الکتاب ہونا ضروری ہے. فا فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. اسی لیے ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے. تنہا اگر پڑھ رہا ہے تب تو خود اس کو پڑھنا پڑے گا, یا امامت کر رہا ہے تو بحیثیت امام ہونے کے اس کو پڑھنا پڑے گا. مقتدی اگر ہے تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے, کیونکہ امام اس کی نمائندگی کر رہا ہے پڑھنے میں جماعت سے ہونے کی وجہ سے. اب سارے لوگ مل کے شور کرنا لگیں گے تو پھر وہ یکسوئی ہی ختم ہو جائے گی اور ایک دوسرے سے حرج بھی ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ غیر مقلدوں کی بحث ہو گئی, اس زمانے کے جو اہل حدیث ٹائپ کے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ. امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ نہیں, سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے لیکن ایک پڑھنا اپنے طور پر ہوتا ہے, ایک حقیقتاً ایک پڑھنا حکمن ہوتا ہے کہ سب پڑھنے کا حکم ہے اس پر. تو کہنے لگے ہم وقت مقرر کر لیتے ہیں بحث کرنے کے لیے. امام علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے بحث کر لیتے ہیں, مقرر کر لو. وقت مقرر ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے, کچھ دیکھنے سننے والے بھی جمع ہو گئے, کچھ لوگ بحث کرنے کے لیے بھی آ گئے. امام صاحب تشریف فرما دے, سب جب بیٹھ گئے تو کہا بات شروع کریں, کہنے لگے ہاں بات شروع کرو. تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم لوگ 10-15 آدمی ہو, سارا آدمی کاؤ کاؤ کریں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں. تم میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار اور اچھا بولنے والا ہو اس کو طے کر لو کہ وہ بولے گا, متکلم ایک ہو, ایک سوئی رہے گی. میں ادھر سے بولوں گا ادھر سے تمہاری طرف سے ایک آدمی بولے, سارے نہ بولے. کیا رائے تم لوگوں؟ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے, یہ آدمی ہے, یہ ہماری طرف سے نمائندگی کرے گا, اس کا علم صحیح ہے, اس کو حدیثیں زیادہ یاد ہیں, یہ بات کرے گا. امام علی پر رحمتہ اللہ فرمایا کہ جاؤ, بحث ختم ہو گئی. تو بولے ختم کہاں ہوئی, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. تو بولے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 10-15 آدمی ایک ساتھ بولیں گے تو گڑبڑ ہوگی, 10-15 کی طرف سے ایک بولنا چاہیے. اللہ نے بھی یہی نظام رکھا ہوا کہ پوری جماعت پڑے گی تو گڑبڑ ہوگی, ایک پڑھے سب پیچھے رہیں اور وہ اس ایک کا بولنا سب کا بولنا ہے. اور پھر حدیث میں بھی صراحتن ہے, حضور نے فرمایا کہ قراءت الامام قراءت للمقتدیین, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے. تو پڑھنا تو سب کو ہے سورہ فاتحہ, لیکن کسی کو ظاہراً پڑھنا پڑتا ہے, کسی کو حکمن پڑھنا پڑتا ہے, اعتبار حکم کے وہ پڑھنے میں شامل ہے. اگر وہ مقتدی نہ ہوتا تو خود اس کو پڑھنا پڑتا, مقتدی ہونے کی وجہ سے جو امام پڑھ رہا ہے وہ اس کو شامل ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ الامام ضامن, امام ضامن ہے, والمؤذن مؤتمن, اور مؤذن امانت دار ہے. اسی حدیث کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہے کہ امام کی اگر نماز ٹوٹ گئی تو مقتدیوں کی ٹوٹ جاتی, امام کی صحیح ہوئی تو مقتدی کی صحیح ہو جاتی, ایون مقتدی سے غلطی ہو تو بھی صحیح ہو جاتی ہے. ہاں الا ہے کہ فرض اس کا چھوٹ گیا ہو تو پھر نہیں ہوگی, ورنہ واجب وجب چھوٹا تو بھی ہو جاتی ہے. امام ضامن ہے, وہ ذمہ دار ہے, جب وہ ذمہ دار ہے تو اس کی نماز پر ڈیپینڈ ہے سب. وہ صحیح ہو رہی تو سب کی صحیح ہوگی, اس کی صحیح نہیں ہے تو سب کی بھی صحیح نہیں ہے. الامام ضامن, حضور نے تو فرمایا کہ الامام ضامن, امام ضامن ہے. جاہلوں نے یہ کر دیا کہ ہاتھ سے امام ضامن باندھ دیا, پٹا باندھ دیا لال, کہ یہ امام ضامن ہے, اس میں چار آنے باندھتے ہیں, چار آنے, آٹھ آنے, ایک کوارٹر, دو کوارٹر, کچھ بھی اس میں باندھ دیا, ایک آدھ ڈالر کا نوٹ باندھ دیا اور کہنے لگے یہ امام ضامن ہے. وہاں منزل پہ جانے کے بعد, امریکہ کو پہنچ جانے کے بعد اس کو سب کھا کر دینا. وہ امام ضامن یہاں سے نکال کے لائے, وہ تو حضور کا امام ضامن کدھر ہے, یہ امام ضامن کدھر ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے جماعت سے اس میں جو امام ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے, الامام ضامن. اچھا ہوتا کیا ہے معلوم, جو بدعتیں وغیرہ ہوتی ہیں نا اس میں زگ زگ بہت ہوتا ہے, کچھ ادھر سے مل گیا, کچھ ادھر سے مل گیا, کچھ ادھر سے مل گیا, کچھ ادھر سے مل گیا. تو یہ امام ضامن نے, ضامن پر بدعتیوں نے بہت, شیعوں نے بہت تڑکا لگایا, اس میں شیعوں کا بازار ہے. اس میں وہ یہ کہ ان کا وہ اپنے امام کو جو کہ غائب ہو گیا ہے غار میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے حوالے کسی پرسن کو کر دیں تو وہ خیر خیریت سے پہنچا دیتا ہے. اس کے نام پہ ہوتا ہے وہ ڈالر جو ہاتھ پہ باندھا جاتا ہے, یہ امام ضامن کے حوالے کیا اس کو, اس کے نام پہ اس کو صدقہ کر دینا. یہ سب جہالت ہے. حضور نے تو یہ فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن, مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے, اور اسی لیے مؤذن امانت دار ہے, مؤذن کے ذمے ہیں کہ وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتا. یہ بنیاد ہے حناف کے پاس کہ وقت سے پہلے جو اذان نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ اگر اس نے ابھی صبح کا وقت نہیں ہوا, صبح کی اذان دے دی, کسی نے اذان ہوئی سمجھ کے نماز پڑھ لی اور ابھی وقت نہیں ہوا, تو گردن پہ کس کے جائے گا؟ مؤذن کی جائے گا گناہ. وقت سے پہلے اس لیے اذان نہیں کہی جا سکتی کیونکہ مؤذن امانت دار ہے, اس کے ذمے ہیں कि वो अमानतदारी के साथ में वक्त होने पर लोगों को बताए कि नमाज का वक्त हुआ, उससे पहले बताएगा तो अमानत में खयानत है। खैर ये इस पर याद आ गया कि सूरह फातिहा का जिक्र मुफस्सिरीन ने यूं बयान किया इसमें, और यह है कि ये अलहम्द के साथ में तस्बीह बयान करो कबल तुलूई शम्स, सूरज के तुलू होने से पहले भी, जो आमतौर पर फजर की नमाज की सूरत में अदा किया जाता है, और कबल गुरूबिहा, सूरज के गुरूब होने के पहले भी, जो असर के वक्त असर की शक्ल में और बाद हजरात के नजदीक जोहर भी इसी में शामिल है, अदा किया जाता है। मिन आना इल्लैल, और रात के वक्त में भी जो कि सूरज के गुरूब होने के बाद किया जाता है, जिसमें मगरिब भी शामिल है और ईशा भी शामिल है। सूरज के गुरूब होने से पहले में दो नमाजें शामिल हैं, सूरज के गुरूब होने के बाद में दो नमाजें शामिल हैं, इधर जोहर और असर है और उधर मगरिब और ईशा है, और तुलू होने से पहले फजर है, पांचों नमाजों का बयान है इसमें। और रात के वक्त में से मुराद बाद हजरात तहज्जुद लेते हैं, मिन आना इल्लैल, रात के औकात में भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियतें हैं बहुत सी, तो ये नहीं कि खसूसियतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ राहत में ही हैं, या ये कि आपको इख्तियार ज्यादा देने में ही है। जैसे बोलते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार से ज्यादा बीवियों की इजाजत थी, यही वजह है कि नौ बीवियां आपके पास रही हैं। तो अब ये गैर जो अहले हदीस हैं वो मानते नहीं इस बात को, तो कहते हैं हम हदीस पर अमल करने वाले हैं, हुजूर की नौ बीवियां थी तो चलो। आजकल ये भी फतवा चला है आजकल के, चार पे लिमिट नहीं है, जब हुजूर की थी तो हमारी क्यों नहीं होंगी भाई। अच्छा खसूसियत थी हुजूर की, बोले तो बोले ये समझते हैं कि हुजूर की खसूसियत ऐसी चीज में थी शायद जिसमें ज्यादा फायदा ही फायदा है, तहज्जुद भी हुजूर की खसूसियतों में से, आप पे फर्ज थी, निस्वास भी हुजूर की खसूसियतों में से, वो भी आप पर फर्ज थी, आप तो आपके ऊपर ज्यादा चीजें थी। और अगर आप इस तरह करेंगे तो अल्लाह तबारक आप खुश हो जाएंगे, लाल्ला का तरबा, लाल्ला तो वैसे आता है यकीन को बताने के वास्ते कुरान पाक में, है तो उम्मीद के माना के लिए लेकिन यकीन ही को बताता है। इसमें एक बात यह भी आई कि जो आदमी नमाज में मशगूलियत इख्तियार कर ले इबादत में और उसके साथ साथ सब्र से काम ले तो उसकी पसंदीदा हालत उसको मिल जाती है खुद इस दुनिया में भी, आप खुश हो जाएंगे, मतलब ये कि खुशी वाली बात आ जाएगी आखिरत में तो सवाब की शक्ल में आएगी और बहुत मुमकिन है कि दुनिया में भी आ जाए, क्योंकि इस तरीके से आदमी अपना गम हल्का कर लेगा, टेंशन से हट जाएगा, वो दूसरे पे चला जाएगा, वो नखा मखा मुखालफत का, दुश्मनों का, दुश्मनों की दुश्मनी का एक बंदर जो है ना पीठ पर बैठा रहता है और हमेशा उसको खुजाता रहता है, इससे आदमी फारिग हो जाता है। अब जब ये बात है कि लोगों की मुखालफत पर आप सब्र कर लीजिए और ये है कि आप अपनी अपनी इबादत के अंदर मशगूली अख्तियार फरमा लीजिए, तो उसके साथ साथ ये फरमा रहे हैं कि जब खाली इनको सब्र करना है तो जिन लोगों को मौका दिया गया है उन पर नजर भी नहीं करना है, वला तमुद्दन अयनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिन्हुम, और नजर उठाकर भी न देखें आप, अपनी आंखों को उठाकर भी न देखें आप, जैसा कि आप अभी तक नहीं देख रहे हैं आइंदा भी न देखें। नबी क्यों किसी के ऊपर नजर उठा के देखेंगे कि भाई इनको कितना मिला हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उम्मत को ये बात बताई गई, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिताब किया गया तो इसका मतलब ये है कि काफिरों के साथ जब ये मामला है कि उनके लिए एक वक्त हमने मुकर्रर किया हुआ है, इस वजह से उनको ढील दी हुई है, तो ढील देने तक का जो मौका है उस ढील देने तक के मामले में जितनी ढील इनको मिलेगी वो ढील पर आप नजर ना करें, क्योंकि वो ढील की वजह से है वो मामला, क्योंकि जिसको आखिरत में हमेशा के लिए अजाब होना है उसको अगर दुनिया में थोड़े दिन के लिए दे दिया गया तो क्या दे दिया गया, कुछ भी नहीं दे दिया गया, लिहाजा वो नजर करने की चीज नहीं है, क्योंकि आप तो आखिरत में अजाब नहीं चाह रहे ना, आपको तो आखिरत में अजाब नहीं होने वाला है, उनको आखिरत में हमेशा के लिए अजाब होने वाला है, और उनको इस दुनिया में फौरी उनकी सजा पर पकड़ नहीं की जाने वाली है। जब पकड़ नहीं की जाने वाली है तो जो गलती वो करेगा उस गलती की मोहलत तो उसको मिलेगी, जब मोहलत उसको मिलेगी तो उस मोहलत में जो फायदे उसको हासिल हो रहे हैं, जो इंजॉय वो कर रहा है, उस पर तुम्हारी निगाह नहीं उठनी चाहिए, इस वास्ते कि मुजरिम को जो चीज दी गई खाने पीने की, कोई भी आदमी ये तमन्ना नहीं करना चाहिए कि चाहे मुझे भी वो सजा मिले मगर मेरे को भी वैसा मौका खाने पीने को मिल जाए। ये क्या बात हुई, एक आदमी को सूली पे चढ़ा रहे, उसे पूछे तेरी क्या ख्वाहिश है, उन्होंने बोला मेरे को लड्डू चाहिए, उसको लड्डू दे दिया गया। एक आदमी जिसको सूली की सजा नहीं हुई वो बोल रहा कि चाहे मुझे भी सूली पे चढ़ा दो मगर लड्डू दे दो, ये क्या बात है, चाहिए किसी को ऐसा। तो यही है कि वो लड्डू पे नजर नहीं कर सकते, वो जाने दो, विश्वास वो लड्डू पे इसलिए नजर नहीं कर सकते कि लड्डू के बाद उसका खड्डू होने वाला है। तो किसी आदमी को वो लड्डू लड्डू दिखेगा ही नहीं, दिखता ही नहीं वो, तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये फरमाया यहाँ पर कि ला तमुद्दन्ना आई नहीं कि ला मामताना भी, जो हमने इन दुश्मनों को और दुश्मनों के मुख्तलिफ ग्रोहों को, जमातों को, यानी कौमों को बाजाबता, यहूद हैं, नसारा हैं, दहरिये हैं, इनको जो कुछ हमने दुनिया का साजो सामान और दुनिया की रौनक दी हुई है, जहरतल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जो रौनक दी हुई है, रौनक जो है वो जरूरत से बहुत आगे की चीज होती है। किसी आदमी के पास खाने पीने ही नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो वो रौनक पे कहाँ जाएगा, डेकोरेशन पे कहाँ जाएगा, चमक दमक पे कहाँ जाएगा, जेबो जीनत पे कहाँ जाएगा। गरीब मुल्कों में सब ये कुछ शो पुट अप इसलिए नहीं दिखता कि वहां असली खाने को ही तो माल है, पेट भरने को ही नहीं है, तो फिर अब ये सब नखरों को कहां से रहेगा। और जब किसी के पास पेट भरने के बाद बहुत कुछ पड़ा हुआ होता है तो फिर नखरों के लिए चाहिए। कल एक साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कुत्तों की खिलौनों की दुकानें हैं, कुत्तों के खिलौनों की दुकानें हैं और बड़े बड़े शॉप हैं, उनकी गुड़िया अलग है, उनके वो अलग है, उनके खेलने के बड़े लक्की कुत्ते हैं इन लोगों के, मगर वो दुनिया के एतबार से ही है बस। तो ये तो सब नखरे की चीज हो गई ना, खाना फूड लेना देना अला भला बता। तो ये इससे अंदाजा किया जा सकता है कि जब इनके कुत्तों के हैं तो इनके बच्चों के कितने नहीं होंगे, इनके बच्चों के इतने हैं तो इनके बड़ों के कितने नहीं होंगे। जब इनके बड़ों के साथ ये है तो जरूरत से जायद ये सब चीजें हैं, तो जरूरत का क्या मसला है। तो ये सब जहरत है, ये इसी वजह से कुरान पाक में लफ्ज जहरा इस्तेमाल किया गया है, यानी बहजत और रौनक और चमक दमक, क्योंकि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज होती है जो आदमी की असली जरूरत से फारिग होती है। अल्लाह ने फरमाया कि इस पर तुमको नजर नहीं करना चाहिए, इस पर नजर उठा के भी नहीं देखना है। ला तमुद्दन्ना आइनैक इला मा मत्तअना भी, गोया इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को भी जवाब दिया, गैरों को भी जवाब दिया। गैरों को ये ख्याल पैदा हो रहा था कि अगर हम अल्लाह ताला के महबूब नहीं है या हमारा दीन पसंदीदा नहीं है तो हमें इतना क्यों मिलता है। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब यह है कि तुम्हें आखिरत में कुछ भी मिलना नहीं है और यहाँ तुम्हें ढील दी गई है और तुम्हारे पकड़ने का टाइम मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए उस वक्त तक के वास्ते तुमको फायदा उठाने का मौका दिया जा रहा है। तो मौका देना किसी को ये उसके महबूब होने की निशानी नहीं है। और मुसलमानों को यह बता दिया गया कि तुमको रीस नहीं, यानी ट्राल नहीं तपकानी चाहिए, साहब हमें क्यों नहीं मिलता, इनको हूर और कसूर मुयसर है और हमारे लिए वादे हूर है खाली, नहीं तुम्हारे लिए वादा है, तुम अल्लाह ताला के वादे पर यकीन करो, बिल्कुल सही वादा है, ये टेम्पररी है वो मुस्तकिल है। यहाँ की हूर तो जो है ना वो चंद दिनों के अंदर पापड़ बन जाती है, और बकौल हजरत हकीम अख्तर साहब दामद बरकातुहुम के उसके सर के बाल जो है ना बुड्ढे गधे की दुम हो जाते हैं, चंद दिनों में दांत निकल जाते हैं, नाक मुंह देखने के काबिल नहीं रहता। और वो जो हूर मिलने वाली है मुसलमानों को, वो तो हर दिन उसका हुसन बढ़ता ही रहेगा, हुसन में इजाफे का सिस्टम है आखिरत में, धनवान का सिस्टम नहीं है, जवाल का निजाम नहीं है वहां पर, तलाकी का निजाम है। जितना ज्यादा उम्र ज्यादा होती जाएगी उतनी जवानी बढ़ती चली जाएगी और हुसन बढ़ता चला जाएगा। किसी चीज की शॉपिंग नहीं है जन्नत में सिवाय हुसन के, जन्नत में हुसन की शॉपिंग है, बाजार लगे होंगे हदीस में आता है। और यह है कि जो शक्ल और जो हुसन किसी चीज का ज्यादा पसंद आएगा तो आदमी जो है ना वो अपने ऊपर अप्लाई कर लेगा बस, और घर वालों के पास जब जाएगा तो वो कहेगा कि तुम तो यहां से जब गए थे तो दूसरी शक्ल में गए थे, ये क्या होता है। हाँ मैं बाजार में गया था तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये कर लिया है। एक सहाबी ने अर्जी किया कि अल्लाह के रसूल फिर औरतें भी जाएंगी शॉपिंग को, तो फरमाया कि जब मर्द वापस आएंगे तो इनकी शक्लें यहाँ बदली हुई होंगी, तो उनके हुस्न का इंतजाम ये है कि यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। कमाल ये है कि वहां पर भी उनको शॉपिंग के ऊपर थोड़ा है मसला, तुमको जाने की जरूरत नहीं, यही दे देते हैं हम तुमको, मगर यह है कि वहां का हुस्न है। मुसलमानों के लिए तो वादे खूर ही है, लेकिन वो अल्लाह का वादा है, किसी ऐसे वैसे का वादा नहीं है, अल्लाह के नबी का वादा है, खुदाई निजाम के साथ में। यहाँ थोड़ा सा मसला इन लोगों के लिए आजादी का है, आयाची का है, कुछ भी नहीं। ये दुनिया की रौनक है, तो इसलिए मुसलमानों को ये बताया गया कि तुमको राल नहीं टपकाना है। अच्छा, ये शुबा जो है ना मजहबी गैर मजहबी सबको होता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि तो उमर रजी अल्लाह तआला उनको ये शुबा हो गया। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज मुतहरा से नाराज हो गए, नाराज होकर आप एक कमरे में चले गए, बाला खाने में चले गए, हजरत बिलाल को बिठा दिया, किसी को आने मत देना, बहुत गुस्से में थे आप। लोगों को पता ही नहीं था क्या हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बाहर गए हुए थे, जैसे ही वापिस आए तो पता कि लोगों ने बताया कि मालूम है आपको क्या हुआ। क्या हुआ? कि हुजूर तो नाराज हो गए, और ये बात उड़ गई कि हुजूर ने सबको छोड़ दिया। उन्होंने कहा जाओ सबको छुट्टी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने समझ गया कि शायद छोड़ दिया हो। हजरत हफ्सा के पास गए, वो रोती हुई बैठी हुई थी, बेटी जो इनकी हुजूर की जो बीवी है, तो उनको रोता हुआ देख के यकीन ही हो गया इनको कि शायद कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई। तो हफ्सा को बहुत डांटा हजरत उमर ने, बगैर बात करेंगे, मैं तो उसे बोलता नहीं था, ऐसा मत बोल वैसा मत बोल, हुजूर से जुरत मत करो, हुजूर के सामने जुबान मत खोला करो, हुजूर का अदब किया करो, मैं तुझसे पहले बोला करता था ये वो। फिर पूछा कि क्या हुजूर ने तलाक दे दी? कहने के नहीं, बस इतना ही मालूम है कि नाराज है। इसी पर सारे उम्मातुल मोमिनीन बैठ कर रो रहे थे, और उम्मातुल मोमिनीन तो खैर रो ही रहे थे, सारे सहाबा भी बैठ के, कोई मस्जिद के इधर कोने में बैठ कर रो रहा, कोई मस्जिद के उधर कोने में बैठ कर रो रहा, कोई घर में बैठ कर रो रहा। हुजूर नाराज हो गए, बोले तो किसी को भी इत्मीनान नहीं था, सब रोने पिलाने में लग गए। हजरत उमर कहते हैं कि मैं भी बहुत देर तक रोता रहा, फिर उसके बाद में मुझे बेचैनी हुई, मुझे रहा नहीं गया तो मैं हुजूर के पास गया। हजरत बिलाल दरवाजे में बैठे हुए थे, पूछा तो कहने के आप किसी को आने की इजाजत नहीं है, और अगर किसी को आना है तो इजाजत लेके जाना है। तो कहा कि बोलो जाके कि उमर आया है। हजरत बिलाल जाके बोले कि हजरत उमर आए हैं। तो हुजूर एक ना दो खामोश, मस्जिद में चले गए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वापस। वहां जाके बैठे बैठे थोड़ी देर बैठे, रोए पलाए, फिर बेचैनी हुई तो फिर आए, बोले कि उमर आया है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। हजरत बिलाल जाके फिर बोले, फिर खामोश, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो फिर मस्जिद में जाके बैठ गए, फिर थोड़ी देर के बाद में बेचैनी हुई तो फिर आए। तीसरी मरतबा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया हजरत बिलाल ने कि हजरत उमर आए हैं, तो हुजूर ने फरमाया अच्छा अंदर आने दो उनको। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अंदर जाके बैठ गए, कुछ नहीं था ऊपर के कम, यानी वहां पे एक चटाई पड़ी हुई थी और आप लेटे हुए थे, और आपके जिस्म पर चादर भी नहीं थी, आप नंगी पीठ थे बिल्कुल, एक तहबन बंधे हुए थे बस। बनियन का तो रिवाज ही नहीं था उस जमाने में, कुर्ता हुआ करता था या चादर हुआ करती थी अहराम की तरह की, न वो अहराम की तरह की चादर थी न कुर्ता था, एक तहबन आपकी बंधी हुई थी और आप लेटे हुए थे, एक चटाई पे लेटे हुए थे। इंतहाई गोरे, बहुत नर्म नाजुक खूबसूरत इनके, और बहुत मुलायम जिस्म था आपका नरम, वो पूरी चटाई जो है ना वो आपके जिस्म पे बैठ गई थी। हजरत उमर जब गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो पूरी चटाई जो है ना वो आपके जिस्म पर उतरी हुई थी। तो पहले तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहलाने लगे, इधर की बात की उधर की बात की, थोड़ा हंसाना चाह, इधर बात करें तो नहीं हंस रहे, उधर बात करें तो नहीं हंस रहे। तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जहन में एक तरकीब आई, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपन लोग मक्के में थे, सब मुहाजिरीन में से है ना, जब अपन लोग मक्के में थे तो अपना डोमिनेशन था, औरतों को हम दबाते थे, जब मदीने में आ गए तो इनका डोमिनेशन हो गया, ये हमें दबा रहे हैं, बोले इस वजह से आपको तंग कर रहे हैं। तो ये कहते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी हंसी आ गई, तो हजरत उमर की जान में जान आ गई कि चलो मुस्कुरा तो दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं जरा हुजूर को थोड़ा हंसाऊं, थोड़ा दिल बहला दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने थोड़ा सरकार की हालत पर गौर की कि खाली सी चटाई है, तहबन है, आप लेटे हुए हैं, उसके ऊपर कोई चीज नहीं है, कुछ चादर तक बिछी हुई नहीं है, कम्बल तक बिछी हुई नहीं है, तो रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे अल्लाह के रसूल, आप तो हबीबुल्लाह हैं, आप सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन हैं, आप आखिरी नबी हैं, और ये कैसर व किसरा, इनकी कालीनें देखिए आप, इनके फर्नीचर देखिए, इनकी इनके हशम खदम देखिए, अल्लाह ने इनको कितना कुछ दिया है, आपको क्यों नहीं दिया, इन्हें आपको दे दे, अगर उनको दिया है किसी वजह से दे, लेकिन आप तो ज्यादा इसका हक रखते हैं। बस हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर नाराजगी हो गई, आप उठ के बैठ गए, फरमाया अव फी शक इन तया इब्न अल खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे तू अभी तक शक में पड़ा हुआ है, उलाएक कौमन उज्जिरत लहुम तय्यिबात हुम फिल हयात दुनिया, ये कौम वो है कि जिनके मजे उनको दुनिया की जिंदगी में निमटा दिए जा रहे हैं, जिनके मजे दुनियावी जिंदगी में उनको निमटा दिए जा रहे हैं, खत्म कर दिए जा रहे हैं, तय कर दिया गया कि भाई थोड़ा सा मजा कर ही लें यहाँ पे, क्योंकि उनको बाद में मिलना नहीं है, तो उनका अपने से क्या जोड़े। ये मजहबी लोगों को भी होता है, मुसलमानों को भी ये वसवसे बहुत आते हैं, गैरों को तो इसमें जामी होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़हरत अल-हयात दुनिया लिनफ्तिनहुम फी, ये जो दुनिया की रौनक है इसकी तरफ तुम नजर उठाकर भी मत देखो, ये एक खास निजाम के साथ में है क्योंकि आखिरत में उनको कुछ मिलना नहीं है, ये इसलिए है ताकि हम इसमें उनकी आजमाइश करें। लिनफ्तिनहुम फी के अंदर बहुत से मतलब हैं। एक मतलब तो यह है कि इसमें उनकी आजमाइश मकसूद है कि इसमें रहकर वो खुदा को याद करके, खुदा की नेमतों को याद करके अल्लाह की तरफ लपकते हैं या इसी अपनी गफलत पर किनारत करते हैं, क्योंकि आजमाइश में यही होता है। और एक सूरत यह है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं लिनफ्तिनहुम फी का कि ये हमने उनको दुनिया की जेब व जीनत इसलिए दी है कि दुनिया की जेब व जीनत ही में मस्त होके रह जाए, फिर हमारी पूरी सजा के मुस्तहिक ही हो जाए, ताकि हम पकड़ लें इनको। क्योंकि पकड़ने का एक तरीका यह भी है कि पूरी तरह किसी चीज में मशगूल होने का मौका दिया जाए। अगर कोई मशगूल नहीं है पूरी तरह किसी चीज, उसको पकड़ा नहीं जाता। शेर का शिकार करना हो, अजदे का शिकार करना हो, सांप का शिकार करना हो, मछली का शिकार करना हो, किसी चीज का शिकार करना हो, तो जरा सा वो थोड़ा सा गल को मुंह लगाते नहीं खींचते, पूरी तरह पकड़ने दिया जाता है उसको। तो जितनी उसको ढील दी जा रही है उतना ज्यादा उसको पकड़ने की मजबूती की जा रही है कि पूरी पूरी तरह उसमें मस्त हो जाए, दुनिया में गर्क हो जाए, अब आखिरत का कुछ मामला बाकी ही ना रहे, फिर अल्लाह का अजाब आ जाए। लिनफ्तिनहुम फी, एक मतलब ये लिखा है काजी सनाउल्लाह साहब ने। और एक तीसरा मतलब ये होता है कि ये दुनिया की जिंदगी ही में उलझे हुए रहें और इस दुनिया के साजो सामान ही को वबाले जान बना दें हम इनको, जितना ज्यादा दुनिया से मुतमत्ते होंगे उतना कल जवाबदेही बढ़ती चली जाएगी उन पर। मैंने ये भी दिया था इसका तकाजा मुसलमान होने का था, ये भी कहा था इसका तकाजा मेरी फरमाबरदारी करने का था, ये भी दिया था इसके वजह से मेरा एहसान मानना चाहिए था। तो एहसान के मानने के असबाब बढ़ते जाएंगे और जितना ज्यादा एहसान नाफरमानी हो, एहसान नाशुक्री होगी और एहसान फरामोशी होगी, उतना ज्यादा पकड़ का वो बारिश हो जाएगा। तो इस वजह से दुनिया में जिसको जितना ज्यादा मिला है आखिरत में उसकी उतनी पकड़ का अंदेशा होता है, और जिसको जितना कम मिल गया वो उतना मजे में रहता है। मन रज़िय बिलमालिल क़लील रज़ी अल्लाह भी बिल अमलिल क़लील, जो कम से खुश हो जाता है, कम माल से, कम दुनिया से, तो अल्लाह उसके कम अमल से खुश हो जाता है। बहुत ज्यादा उसने नहीं किया, चलो दुनिया में इसको दुनिया में ज्यादा मिला भी नहीं था। और इस उम्मत के गुरबा तो इस उम्मत की उम्र से आधे दिन पहले जन्नत में चले जाएंगे, अभी उमरा हिसाब किताब में होंगे, ये लोग जन्नत में जाके बैठे हुए होंगे। उन लोगों को थोड़ा ये हुआ कि चलो आधे दिन का क्या है, होते होते आधा दिन हो जाता है। हुजूर ने फरमाया कि आधा दिन से मुराद 500 साल है, क्योंकि आखिरत का एक दिन 1000 साल का है। तो 500 साल का मतलब दुनिया की 5 लाइफ हो गई। तो दुनिया की 5 लाइफ के बकदर और मजे में मजा कर चुके होंगे गरीब लोग, जब कहीं जाके अमीरों की बारी आएगी वहां आने की। और जो अमीरों ने यहाँ दुनिया में फायदा उठाया, कब कितना उठाया, कब उठाया, आदमी कब अमीर होता है, कब फायदा उठाता है, बहुत कम ऐसे होते हैं कि बाप ने कमाया था, बेटा जवानी से अमीर है। वरना तो ये कि खुद पढ़ो, खुद तापड़ बेलो, खुद जना मेहनत मुजाहिदा करो, खुद पसीना एक करो, कुछ जमाओ, मेहनत करो दिन रात की, तब कहीं जाके 50 के करीब जाके आदमी थोड़ा सा सेटल होता है, एस्टेब्लिश होता है। और 50 के बाद खुद ही नहीं क्या रहता है, कुछ नहीं, जो टाइम गुजर गया, जब खुजली हो रही थी, जब नाखून नहीं थे, जब नाखून आ गए तो खुजली बाकी नहीं। जब 50 के हो गए तो अब ऑटोमेटिकली बीवी भी 50 की हो गई करीब करीब, वो गया काम। हाजिमा खराब हो गया, वो गया काम। शुगर हो गई, ये हो गई, वो हो गई, चलो इधर काम खराब हो गया। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इसमें दर्द, मतलब ये कि 50 के बाद में तो कमाई से पैसों से एडजस्टमेंट ही करना रहता है बस, जिसको अपने पास मठारना कहते हैं। अपने पास सिस्टम है ना गाड़ियों के मठारने का, कि गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, दब गई इधर गाड़ी उधर गई, तो मार मार के वो लोग धड़ धड़ आवाज आती रहती है मठारने के, उसमें तो सही करते रहते हैं गाड़ी। अब ये जो दिन चंद्र गाड़ी है उसको मठार के लेके चलने का रहता, वो पैसे पूरे उसमें ही जाते रहते हैं उस वक्त। अब अगर किसी ने मजे किए भी तो क्या मजे किए, वहां वो लोग 5 लाइफ जो है ना गुजार चुके होंगे आयश की, जन्नत वाली। उस वक्त ये अमीर आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए आ रहे होंगे, उसमें से वो भी जो जन्नत ही बना होगा। उस अमीर की बात हो रही जिसने जो जन्नती बना होगा, और आमतौर पर जो अमीर होता है वो यहाँ जन्नती का बनता कहाँ है। हमें दुनिया में हमेशा मजहब का तस्वर गरीब के साथ है, अरे बेचारा न मुल्ला है, नमाजी है, मस्जिद को जाता, बेहैसियत आदमी है, इस वजह से अब क्या करता, कुछ न करता तो खुदा के सामने सर ही मार रहा है। बहुत ज्यादा मालदार लोगों के पास ये तसव्वुर ही नहीं होता कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, इल्ला माशाल्लाह, मुस्तस्ना तो सब ने। इसलिए फरमाया कि लिनफ्सिहिम फीह, इसलिए कि ये दुनिया खुद वबाल जान भी बन जाएगी उनके लिए, कि जितना ज्यादा दुनिया होगी उतना ज्यादा वबाल होगा, आखिरत में उसकी उतनी ज्यादा पकड़ हो जाएगी। और दूसरी एक बात यह भी है कि दुनिया की ज्यादती खुद इस दुनिया के अंदर आदमी के आयश को मुकद्दर कर देती है। ये एक उसूल है दुनिया का, ये दुनिया का एक उसूल ये है कि जितनी ये ज्यादती होगी इसमें, यहाँ दुनिया उतनी ज्यादा उसके लिए मुकद्दर हो जाती है उसके दिल के एतबार से। प्रॉब्लम इतने पैदा हो जाते हैं, हालात इतने बढ़ जाते हैं कि फिर सुकून नहीं रहता कल्बी। इसको तय करो, उसको तय करो, इस मसले को हल करो, उस मसले को हल करो, ये बढ़ जाता है। जितना कम दुनिया होती है मसाइल उतने कम होते हैं। और ये तजुर्बा भी है, जहां जितनी ज्यादा दुनिया है वहां उतनी ज्यादा परेशानियां हैं। जो जितना ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है वहां के वहां का इंसान उतना ज्यादा हिडक में है, परेशानियों में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है। जो जो परेशान जो बीमारियां टेंशन से और प्रेशर की वगैरह की वजह से हैं, वो बीमारियां इन मुल्कों में ही ज्यादा होते हैं। चैन और सुकून लोगों का गया हुआ है। जो जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं नींद की गोलियां वहीं सबसे ज्यादा बिकती हैं। जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं खुदकशी के वाकयात वहीं सबसे ज्यादा होते हैं। हालांकि काफिर तो खास तौर पर मरने को किसी कीमत पर राजी नहीं होता, क्योंकि उसका तो यही है कि जब तक मैं जिया हूं उस वक्त तक मुझे मजे करना है। फिर भी वो मरने पर राजी हो रहा है और मरने तक का इकदाम कर रहा है, तो कहां तक उसकी परेशानी गई होगी, अंदाजा लगाइए। मुझे इससे तो बेहतर मर ही जाना। उसको मालूम नहीं है कि मरने के बाद में तो इससे ज्यादा मुसीबत है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी अगर चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। वहां जाने के बाद पता चलता है कि ये तो उल्टा हो गया, उसे तो बेहतर ये था कि मैं मरता ही नहीं। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ला तमुद्दन आई नहीं का, हरगिज अपनी निगाहें उठाकर न देखिए, इला मामताना भी उस चीज की तरफ जो हमने काफिरों के इन गुरोहों को दुनिया की रौनक और जीनत दी हुई है, लिनक की नी और इसलिए दी हुई है ताकि हम उनको इसमें आजमाएं। वरिज को रब का खैर व अबका, और तुम्हारे परवरदिगार का जो रिज्क है वो बेहतर है और बाकी रहने वाला है। अल्लाह की तरफ से जो दुनिया आखिरत में जो मिलने वाला है वो ज्यादा बेहतर भी है, ज्यादा बाकी रहने वाला है। और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दुनिया में जो हलाल रोजी मिल जाए अगरचे वो थोड़ी हो, वो ज्यादा बेहतर है और उसकी बरकत ज्यादा बाकी रहने वाली है। यहाँ पे थोड़ा हलाल का वो बरकत वाला है, वो खैर का सबब है, वो इत्मीनान का बायस बनता है, तसल्ली रहती है तबीयत को। और जो हराम का होता है वो अपने साथ मसाइल को लपेटता है और बेचैनी रहती है उसके साथ। वह अमर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को आप नमाज का हुक्म फरमाइए। ऊपर यह था कि आप खुद तस्बीह बयान कीजिए सुबह शाम फला फला वक्तों में, और उसके साथ साथ ये है कि अपने अहल को भी इसका हुक्म कीजिए कि वो भी नमाज पढ़े। वह अमर अहलक बिस्सलात, और अपने घर वालों को आप नमाज का हुक्म फरमाइए, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी उस पर जम जाइए। ये नहीं है कि घर वालों को तो बोल रहे पढ़ो और खुद सो जा रहे हैं, नहीं, इस्तेकामत खुद चाहिए। जिम्मेदारी अपनी भी है, जिम्मेदारी बीवी बच्चों की भी। इस आयत के उतरने के बाद बावजूद इसके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने वाले सब भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बीवी फातिमा के मकान पर जाके अस्सलाह अस्सलाह कहा करते थे। अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसके मुआफिक इंतकाल होना चाहिए। बीवी फातिमा तो हर वक्त नमाज पढ़ती थी, वो थोड़ी नमाज में सुस्ती करती थी। लेकिन आप अपने तरफ से भी ऐसे अजवाज मुतहरात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाते रहते थे। और फराइज के अंदर तो खैर बोलना ही नहीं पड़ता था, तहज्जुद वगैरह में भी बहुत एहतमाम से उठाने लगे थे। इसके बाद मन युकिदुहुन्ना सवाहिबल हुजरात, ये फरमाया करते थे कि ये हुजरे वालियों को कौन बेदार करेगा, इनको जरा बेदार कर दो, जरा आवाज लगा दो इनके घर, इनके कमरों पे। छोटे 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 कमरे बने हुए थे लाइन से मस्जिद नबवी में अजवाज मुतहरात के। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे ऐसी रोजी कमवाना नहीं चाहते कि इबादत में और नमाज में खलल हो। रिस्क जो है अगर आदमी रिस्क के अंदर लगने की वजह से इबादत में खलल डाले तो अल्लाह फरमा रहे कि ऐसी रोजी कमवाना हम किसी से चाह ही नहीं रहे, क्योंकि रोजी तुम अगर कमाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा वैसा तो नहीं है ना। रोजी तो हम देते हैं, रोजी का निजाम हमारी तरफ से है, नहनु नरजुकुक, हम रिस्क देते हैं आपको, आपको भी और आपके घर वालों को, तो चाहे अपनी रोजी हो चाहे अपने अहलो आयाल की रोजी हो, ऐसी रोजी अल्लाह पाक नहीं चाहते हैं बंदों से कि जो फराइज के अंदर और जरूरी कामों में खलल डाले। फराइज और जरूरी उमूर को अंजाम देने के बाद में जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक रोजी में लगो, क्यों, इसलिए कि रोजी तो हम देते हैं आपको, लिहाजा आप तो इबादत में लगो, और इबादत से फारिग होने के बाद में ये भी एक इबादत का हिस्सा है, रोजी में भी लगो, मगर रोजी में ऐसा लगना कि नमाज न पढ़ सको, इबादत न कर सको, ऐसी रोजी हम कमवाना नहीं चाह रहे, क्यों, इस वास्ते कि रोजी तो देने वाले हम हैं, और जब हम खुद कह रहे हैं कि तुम बस अपनी इबादत के साथ इसको करो तो ये काफी है। नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़्वा, और अच्छा अंजाम तो तकवे वालों का, तकवे का है, एक होता है इकाब और एक होता आकिबा, किसी अमल के नतीजे को कहते हैं ये। आमतौर पर अच्छे अमल के अच्छे नतीजे के लिए आकिबत का लफ्ज बोला जाता है और बुरे अमल के बुरे नतीजे के लिए इकाब का लफ्ज बोला जाता है, लफ्ज दोनों का एक ही हो मगर सेवा अलग अलग हो, इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, अच्छा अंजाम वो तकवे पर निकलता है। وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ, और लोग ये कहते हैं कि क्यों नहीं लेकर आते ये हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी। मुशरिकीन मक्का ने जहाँ और बातें कही अपनी बात नहीं मानने के लिए, उधर बनाते थे कुछ ना कुछ बहाने करते थे, उसमें से एक ये भी था कि ये कहा करते थे कि हमें हमारे पास कोई ऐसी वाजह निशानी हुजूर लेकर आए जिसकी वजह से हम मान सकें हुजूर की बात को कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ऐसी कोई वाजह निशानी जो हम मांग रहे हो वो क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि लौला उन्जिल अलैहि मलक, आपके ऊपर कोई फरिश्ता आए जो आपके साथ फिरता रहे और हम उसको देखते रहे और वो लोगों को बताता रहे, या ये कि साहब कोई खजाना आपके साथ उतरे और आपके साथ वो फिरता रहे और आप जो है ना लोगों को पैसे दे दे के लोगों को तरगीब देते रहे कि आओ मुसलमान हो जाओ, या ये कि आपके पास बागात हों, नहरें हों, आपके पास खुद ही दौलत ज्यादा हो, भैया आप अल्लाह के हैं ना और अल्लाह ताला आपसे राजी, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, तो उसको बोल बता के कुछ महल वहल क्यों नहीं बनवा लेते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा था कि खुद आपके पास बागात वगात होने चाहिए, बड़े महलात होने चाहिए। ये कहा था मुशरिकीन मक्का ने कि ताइफ के जो सेठ हैं उनके ऊपर उतार दिया जाता कुरान पाक तो हम मान लेते, आप तो खुद ही गरीब हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिस्क के अंदर तो हम अपनी तरफ से तकसीम करते हैं किसको देना है किसको नहीं, तो पैगम्बर ही हम इनकी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहे दे दें। रिस्क का मामला, रोजी का मामला ऐसा है कि उसमें ही हम सबको बराबर नहीं देते और हमको मालूम है कि किसको कितना देना है किसको नहीं, तो पैगंबरी ऐसी चीज है रिस्क से भी कम दर्जे की चीज हो गई कि उनकी मर्जी के मुआफिक दे दें। ये उनका मंशा यह था कि कुछ ऐसी खास निशानी हो जो खुल्लम खुल्ला दिखने की हो तब हम माने। अल्लाह तबारक व तआला वो खास निशानी भी दे देते हैं, लेकिन अल्लाह को ये बात मालूम है कि जो नहीं मानने वाला होता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ फिर बाद में करता ही है, क्यों, इस वास्ते कि पिछली तमाम कौमों से ये वाकयात हो चुके हैं और अल्लाह को तो मालूम है। पिछले वाकयात पर तजुर्बा करने की जरूरत नहीं अल्लाह पाक को, इंसानों को समझाने के लिए पिछले लोगों के मुतालबे के मुताबिक निशानी पैगंबर ने दिखाई तो भी नहीं मानी उन्होंने। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर इतना बड़ा उन्होंने कैसी बड़ी शर्त लगाई थी कि पहाड़ों में से आप ऊँटनी पैदा करके बताओ, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप यूँ कहते हैं कि अल्लाह से मेरी बात होती है और अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, तो जब तुम्हारे अल्लाह तुम आप अल्लाह के पैगंबर है अल्लाह के हाथ में सब कुछ है तो आप ये कर दो कि पहाड़ में से ऊँटनी निकलवा दो, और फिर ये कि वैसे वो ऊँटनी निकलने के बाद में बच्चा भी दे दे, हामिला हो, और ये भी है कि वो बच्चा भी उतना ही हो जितनी ऊँटनी है। ये क्या बात हुई साहब, मैंने अल्लाह मियाँ कुदरत वाले है बोले ना करके दिखाओ। सालेह अलैहि सलाम ने अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मियाँ लोग ये चाह रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है हमारे लिए क्या मुश्किल है कर देंगे हम, लेकिन ये बता दोगे अगर नहीं मानेंगे तो अजाब आ ही जाएगा, फिर बख्शे नहीं जाएंगे, कह लेंगे हाँ ठीक है। सालेह अलैहि सलातो सलाम ने टाइम बता दिया, जगह बता दी, सब लोग जाके खड़े हो गए, पहाड़ फूटा, पत्थर में से ऊँटनी निकल के आ गई, आते उसने बच्चा दिया अपने उत्ता बराबर। आज ऐसा भी नहीं कि उसके बाद पहाड़ में चली गई, वो इनके साथ ही रहती थी, मगर उसका अजीब खाने पीने का निजाम था, पूरे गांव के ऊंट और गाय भैंस जितना खाते थे एक दिन अकेली उतना उन्हें खाती थी, और जितना पानी ये सारे मिलके पीते थे अकेली उतना, उन्हें तो बहरहाल पत्थर की थी ना, ये उतना पानी पी लेती थी। जब ये अच्छा फिर ये है कि ये इसको देख के कोई जानवर ठहरता नहीं था, सब भाग गया था, क्योंकि वो तो बिल्कुल अबनॉर्मल थी, वो उसका डिल डोल भी तो वैसे ही था, वहाँ पहाड़ की बेटी थी वो, तो वो पूरे जानवर भाग जाते थे देख के, कोई ठहरता नहीं था। तो बारी मुकर्रर कर दी गई थी कि साले अलैहि सलाम की ऊँटनी जो है ना फला दिन पानी पिएगी घाट पर, और दूसरे जानवर उस दिन नहीं आएंगे, जिस दिन दूसरे जानवर आएंगे उस दिन इनको इनकी ऊँटनी नहीं आएगी, बारी मुकर्रर कर दी गई। 9 आदमियों ने मिलकर प्लानिंग बनाई कि साहब इस ऊँटनी को मार देना है। सुना से रात के वक्त में जो है वो ऊँटनी के जाने की जो जगह थी मालूम थी, वहां बैठ गए, जब वो आई तो उसकी कोचों पर इन घुटनों के ऊपर तलवारें मार दी इन लोगों ने। बस जैसे साले अलैहि सलाम को मालूम हुआ और सबको मालूम हो गया, वही आ गई और कहा कि 3 दिन में अजाब आ जाएगा, और 3 दिन के अंदर अंदर आप और ईमान वाले यहाँ से निकल जाओ, इन पर ऐसी सख्त मुसीबत आने वाली है। अल्लाह ताला के लिए तो सब आसान है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला इससे पहले अगर मानने वाले होते तो मान जाते ना, लेकिन मानना चूंकि नहीं था तो एक बहाना था सिर्फ। मुशरिकीन मक्का भी असल यही कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इसी वजह से उसका जवाब दिया, अवलम तातिहिम बय्यिनतुन मा फिस सुहुफिल उला, क्या इनके पास में पिछले सहीफों की दलीलें नहीं आई, पिछले सहीफों की दलीलें क्या इनके पास में नहीं आई। पिछले सहीफों की दलीलों से क्या मुराद है? तो एक मुराद यही है कि पिछले सहीफों के जरिए से क्या इन तक ये बात नहीं पहुंची कि जब इनके मुतालबे के मुताबिक कोई मौजजा दिखाया जाता है तो नहीं मानने की सूरत में अजाब आ जाता है। और आम तौर पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने माना हो तो वो अजाब का शिकार हुए हैं, तो क्या ये इसके इंतजार में है? एक मतलब इसका यह है कि जो दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सही मानने के वास्ते जरूरी है, क्या इतनी दलील इनके सामने आई नहीं अभी तक? कितनी निशानियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई? और तीसरा मतलब इसका यह है कि पिछले सहीफों का जो जुहूर है कुरान पाक की शक्ल में, क्या इनके सामने वो बय्यिना नहीं है? पिछले सहीफों के ही मजामीन और पिछले सहीफों के जो उलूम हैं और पिछले सहीफों की जो बातें हैं वो कुरान पाक के जरिए से आप पर बता दी गई हैं, और मजीद बातें इजाफा भी आप पर बताई गई हैं, तो क्या ये बातें इनके पास काफी दलील नहीं है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के रसूल है? ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस वास्ते कि कुरान पाक जो मौजूदे की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है वो सबसे बड़ा मौजूदा है, क्योंकि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम इसमें भरे हुए हैं, और इल्म बुनियाद है सारी चीज़ों की, सबसे बड़ा कमाल जो है वो इल्म ही का होता है। और एक बिल्कुल ना इन्हें किसी से पढ़े नहीं और जना पिछली किताबों से वाकिफ नहीं है, वो ऐसे उलूम बता रहे जो जिंदगी के सारे शोबों पर और क्यामत तक के वास्ते काम आने वाले हैं, तो ये चीज़ काफ़ी नहीं है। और तकरीबन वो पिछले सहीफों में जो बातें थी वो सब इसमें आ गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह ताहा और हामीमात ये जो है ना तौरात से मुझे दी गई, मतलब ये है कि तौरात का हिस्सा है एक माना में ये, और सूरह बकरा वो जिक्र अव्वल से आपको दिया गया है, जिक्र अव्वल आपने उसके बारे में फरमाया है, कुछ हिस्से जबूर के कुछ हिस्से, यानी वो मजामीन बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं, उन्हीं मजामीन के खुलासे के तौर पर ये उतारे गए हैं। और फिर ये तिवाल मुफस्सल जो है वो बिल्कुल जायद है, फिर मुफस्सलात जिनको कहते हैं 200 आयतों वाले जो सूरे हैं वो फिर, और आप जो पिछली किताबें हैं उन सबसे एक्स्ट्रा हैं, वो जायद हैं, इतना ज्यादा आपको दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान पाक तो इतने वाज़ह सबूत और वाज़ह दलील उनके पास में मौजूद है। असल तो यही है कि नबी की नबूवत के वास्ते जो सबूत चाहिए वो ये है कि ऐसी कोई चीज़ बताए वो जो आम इंसान नहीं कर सकते। अब कुरान पाक तो ऐसी चीज़ है कि आम इंसान पेश भी नहीं कर सकता। ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں کسی عذاب کے ذریعے سے پہلے سے ہی، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ذریعے سے اس قرآن پاک کے اترنے سے پہلے، یہ دلیل کے آنے سے پہلے ہی ہم ان کو اگر مار ڈالتے، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، تو یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنت بھی آیاتی کا ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کر لیتے، من قبل ان نزل و نخزا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ اگر میں اس کے قرآن اتارے بغیر نبی بھیجے بغیر ان کو مار دیتا اور یہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہ آتا پھر یہ میرے پاس آتے، تو جب یہ کہتے کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجی، اب ہم نے رسول بھیجا پھر بھی نہیں مان رہے، کتاب بھیجی پھر بھی نہیں مان رہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، علماء نے فرمایا وہ یہ کہ اگر ہم نہ بھیجتے ہمارے پاس جب آتے تو یوں کہتے کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجے، इसका मतलब यह है कि कोई किताब ना आए और कोई नबी नहीं आया तो भी आदमी को मानना जरूरी है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तहकीक यही है कि ईमान लाना हर आदमी पर जरूरी होता है, चाहे उसके पास कोई दीन की बात पहुंचाने वाला हो या ना हो। पैगंबर का आना और किताब का मिल जाना ये महज फजल इलाही है, लेकिन अगर इंसानों के पास में कोई निज़ाम ऐसा न चलाया जाता तो भी इंसानों पर अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत फर्ज थी, और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना और उनकी तौहीद पर इकरार करना जरूरी था। उसके वास्ते अकल काफी है, अल्लाह के उलूहियत का इकरार और अल्लाह की वहदानियत के इकरार के वास्ते सिर्फ अकल भी काफी है कि अकल से भी आदमी काम लेके कह सकता है कि नहीं, कोई इसका बनाने वाला जरूर है और वही मेरा इलाह है, और वो एक ही हो सकता है, कई नहीं हो सकते, क्योंकि कई मिलके जो है ना डिस्टर्ब होते हैं। एक अगर वो ताकतवर है तो जाहिर है कि वो किसी से दबने वाला तो होगा नहीं, जब दबने वाला होगा नहीं तो अपनी मर्जी चलाएगा, तो सबकी मर्जी एक तो होती नहीं, सबकी मर्जी एक जब ही होती है जब एक दूसरे से अंदेशा होता है, और जब एक को दूसरे से अंदेशा हो तो फिर वो रबी नहीं हुआ, वो ताकतवर नहीं हुआ जो डरता हो। तो जो वाकईतन रब होगा वो अपनी चलाएगा, जब अपनी चलाएगा तो अगर वो एक से ज्यादा होंगे तो हर एक अपनी चलाएगा, और जब हर एक अपनी चलाएगा तो सबकी एक ही चीज नहीं होगी, वो यकीनन अलग अलग होगी। तो इसलिए दुनिया का निज़ाम चलना एक होने की लाजमी दलील है, वरना कायनात का निज़ाम चल ही नहीं। नौका नफी हम आलियातुल्ला, अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के अलावा कुछ और भी होते तो ये आसमान और जमीन का निज़ाम कायम नहीं रह सकता था, ये टूट फूट जाते कभी के। अल्लाह कहता मैं मशरक से निकालूंगा तो दूसरा कहता मैं मगरब से निकालूंगा, तो तेरी क्यों चले मेरी भी चले। वो कहता कि मुझे इस वक्त बारिश भेजनी है, वो कहता नहीं मुझे धूप निकालनी है, वो कहता मुझे गल्ले उगाना है, वो कहता नहीं मुझे तो खिजा डालना है। वो एक को पैदा करना चाह रहा तो दूसरा उसको मार देता। अब दोनों सूरतों में दोनों में टकराव होता कि तेरी चले या मेरी चले, जिसकी चलेगी वो खुदा, जिसकी जिसकी नहीं चलेगी वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा वो जिसकी चले वो ही नहीं सकता, वहां पे कॉम्प्रोमाइज की कोई शक्ल ही नहीं है वहां पे। इसलिए एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह को मानना ये अकल पर भी, अकल इसके लिए काफी है। इमाम भोलीसा की तहसील ये है, और कुरान पाक की इस आयत से भी मालूम हो रहा कि अगर हम ये ना देते और ये हमारे पास आते तो जलील रुसवा होने से पहले हमको अपने रसूल क्यों नहीं भेजा हमारे पास, ये बोलते तो मतलब कि ये न मिलता तो भी वहां जलील रुसवा होते, वो पैगंबर ना आते तब भी उनको जलील रुसवा होना था, और किताब के जरिए से हिदायत नहीं मिलती फिर भी सही रास्ते पर नहीं चलने की वजह से जलील रुसवा होना था। अब किताब भी आ गई, पैगंबर भी आ गए, तो अब तो हुज्जत पूरी हो गई। इस आयत में अल्लाह पाक ने यह मजमून बता दिया कि महज तुम पर फजल फरमाकर तुमको बता दिया गया कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, सही चीज का अंजाम क्या है, गलत चीज का अंजाम क्या है। अब इसके बाद में हुज्जत का मौका बाकी नहीं, किसी को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल मुतरबिसुन फतरबसु, आप ये फरमा दीजिए कि हर कोई इंतजार कर रहा है, तुम हमारा इंतजार कर रहे हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फतरबस मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि कोई हवादिसात जमाना से ये मुतासर हो जाए, नऊज बिल्ला मरमरा जाए तो इनसे जान छूटेगी, जब तक तो इनसे जान छूटी नहीं रही, ये कहा करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया गया कि आप ये बोलिए कि ठीक है आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करो। कुल कुल्लु मुतरबिसुन, सब भी इंतजार ही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं तुम्हारा, तुम भी कर रहे हैं हमारा, बस इंतजार ही कर लो बस। अब मुतरबिसुन फसतअलमून मन असहाबुस सिरातिस सवी व मन इहतदा, तुम अनकरीब जान लोगे कि कौन सीधे रास्ते वाला और कौन हिदायत वाला है। वहां जाकर ही अब पता चलेगा कि सीधे रास्ते पर कौन था, गलत रास्ते पर कौन था, हिदायत पाया हुआ कौन था, गुमराही पाया हुआ कौन था। वहां अल्लाह तबारक व तआला सब इंसानों को उनके अकीदों से लेके उनके सारे आमाल से वाकिफ करा देंगे कि असल अल्लाह का पसंदीदा अकीदा क्या है और क्या नहीं है, पसंदीदा अमल क्या है और क्या नहीं है, किस रास्ते पर इंसान को चलना था, किस रास्ते पर नहीं। और ये ऐलान इसलिए कर दिया गया है कि जिसको एतमाद हो अल्लाह के नबी पर उसको यकीन कर लेना चाहिए कि आप ही सीधे रास्ते पर हैं। वइन्नका लअला सिरातिन मुस्तकीम, और وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलाने वाले हैं लोगों को। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बता दिया है। तो सीधा रास्ता क्या है, आज अगर यकीन नहीं करते तो कल तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। बस यहाँ पर आकर सूरह ताहा खत्म हो गई। सूरह ताहा की गोया इब्तदाई मजामीन में तौहीद का बयान था, तो फिर ये आखिरी मजामीन के अंदर भी तौहीद का बयान है, और उसके साथ साथ दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत तफसील से, फिर आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, और फिर आखिरत के कुछ अहवाल बयान फरमा दिए, और इस दुनिया के अंदर लोगों की आजमाइश के लिए जो अल्लाह ताला का निज़ाम है वो बता दिया, और जो ढील देने की वजह से दुनिया की नाफरमानों को, मुशरिकों को, कुफार को जो कुछ दुनिया मिली हुई है, मज़े कर रहे हैं, इन मज़ों से ना उनको धोखा खाने का मौका दिया गया, ना जो मानने वाले लोग हैं उनको धोखा खाने को मौका दिया गया, दोनों को खोल दिया गया है कि तुम्हारे लिए ढील है, तुम ये मत समझो और इनको बता दिया गया कि जिसको ढील दी जाती है उसको थोड़ा सा मौका दिया जाता है, तुमको अपने राल टपकाने की जरूरत नहीं है। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि आदमी इबादत करे, और इबादत कब करे ये भी बता दिया गया कि शुरू में तुलुए शम्स से पहले भी हो, गुरूब शम्स से पहले भी हो, और रात के दोनों हिस्सों में हो, दिन के दोनों हिस्सों में हो, अतराफ नहार में भी हो, आदमी को 24 घंटे में इबादत वाले मरहले में रहना चाहिए। और दुनियावी एतबार से जो हालात गैर इख्तियारी या इख्तियारी या दुश्मनों की तरफ से पेश आते हैं उनसे सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك ومكرمين بها قابليها وأتمها علينا. يا الله ما غناهك معا فرمائيه، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس میں اثر پیدا فرمائیے، اے اللہ قرآن و حدیث والی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کی ہمت ہمیں نصیب فرما دیجیے، اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اس کا ماحول بنا دیجیے، اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، انسانی شرور سے اور شیطانی شرور سے حفاظت فرمائیے، مسلمانوں میں جو دشمن ہیں ان کے بھی شروع سے حفاظت فرمائیے، کافروں میں غیر مسلموں میں جو دشمن ہیں ان کے بھی شروع سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت عامہ فرمائیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، خاص طور پر امریکہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کے مکر اور چال بازی کا اے اللہ نشانہ بن جانے سے اس کا شکار ہونے سے ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی، عزت و آبرو کی، اے اللہ ملازمتوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ملازمتوں میں کام کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہر قسم کی دشواری کو اپنے کرم سے دور فرمائیے، صحت اور عافیت عطا فرمائیے، رزق کی بے برکتی سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دیجیے، جن کو آپ نے روزی عطا فرمائی اس میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ وسعت عطا فرمائیے، آسانی اس کے اندر پیدا فرما دی، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، بری صحبتوں سے بری عادتوں سے ہماری اولاد کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، ان کے اندر اکرام اور اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، اختلاف کو، انتشار کو، خلفشار کو، بدگمانی کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے، غصوں کو اے پروردگار ختم فرما دیجیے، اے اللہ ہر میاں بیوی میں، ہر جوڑے میں اور پیرنٹس اور اولاد کے اندر اے اللہ غصے والی بیماری کو دور فرما دیجیے، اس غصے نے بے پناہ خاندانوں کو، بے شمار خاندانوں کو برباد کر دیا، اے اللہ مسلمانوں میں اخلاق اور تواضع اور تحمل اور بردباری پیدا فرما دیجیے، اخلاق کریمانہ نصیب فرما دیجیے، شفقت عطا فرمائیے، عزت اور عظمت عطا فرمائیے، ہر طرح کا خیر کا، برکت کا، رحمت کا، عفو عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے، اور بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ.